चला नेक्स्ट अपने सेगमेंट की तरफ चलती, मक्का की गलियों में चलकर देखें।
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني
ये बात सच है हकीकत यही है नबी आपको मैंने देखा नहीं है न दौरे मोहम्मद में पैदा हुआ मैं न साथी सफर का कभी बन सका मैं न आका की आवाज तक सुन सका मैं न गजवात में मुशरिकों से लड़ा मैं मगर सच है ये भी कसम है खुदा की मोहब्बत मुझे आपसे है नबी जी सल्ले अला सय्यदिना
देखते हैं हम मक्का की गलियों में चलकर देखें सीरीज के आज लास्ट एपिसोड इस रमजान का। मैं अंसार की किस्मत पर रश कर रही थी, वो हज के बाद इस्लाम की दौलत से माला माल होके यसरब की तरफ रवाना हो गए थे। उनकी तो दुनिया ही बदल चुकी थी, उन्होंने इरादे कर लिए थे कि अब इस्लाम की खातिर जिएंगे, और उन्होंने इस दफा खूब खुल के इस्लाम की दावत देने का फैसला भी कर लिया था। इसी का नतीजा था कि जब भी यसरब से कोई आता तो वहां इस्लाम के तेजी से फैलने की इत्तला जरूर लाता। मेरे नबी को बेहद इत्मीनान और बहुत खुशी मिली थी इन लोगों से बैत लेके। अल्लाह ताला ने आपके लिए इंतजाम फरमा दिया था, आपकी हिफाजत के लिए एक ऐसी कौम तैयार हो गई थी जो जवान भी थी और जंगजू भी। मुशरिकों को शुरू में तो इस बारे में कुछ ज्यादा सुनगुन नहीं थी, मगर वो चैन से कहां बैठे थे जब से शैतान ने उनको खबरदार किया था। उन्होंने खोज कुरेद करने में कमी नहीं की, वो इधर उधर से मालूमात हासिल करते रहे। आखिर उनको ये पता चल गया कि ये खबर सच्ची थी। जो ही उनको ये पता चला, वो दौड़े इनके नौजवान घोड़ों पर सवार हुए और यसरिब वालों के पीछे निकले कि उनको जाके पकड़ें, मगर वो तो सब निकल चुके थे इनके हाथ से। हाँ, दूर दो नौजवान नजर आ रहे थे जो यसरिब वाले थे, तो इन्होंने जाके उनको ही पकड़ लिया। इनमें से एक तो तेज रफ्तार साबित हुआ और वो इनसे छूट के भाग गया। अलबत्ता दूसरा नौजवान, इनका नाम साद बिन उबादा ले रहे थे, वो पकड़े गए। मैं ये देख के बहुत परेशान हुई। अब क्या होगा, ये अब इनके साथ क्या करेंगे? इनका कसूर क्या है? सिर्फ ये कि ये मेरे नबी के साथ मुआहिदा करके जा रहे हैं इन काफिरों ने। साथ को पकड़ा और इनके हाथ गर्दन के साथ बांध दिए। ये मक्के के मुसलमानों के साथ जुल्मों सितम तो करते ही थे, क्या बाहर वालों के साथ भी ऐसा करेंगे? मुझे याद आ गया मेरे जमाने में जो मजलूम मुसलमानों के साथ हुआ करता था, कोई उनके साथ खड़े होने वाला नहीं होता था। वाकई हर दौर में कमजोरों के साथ कम ही लोग खड़े होते हैं, सब उसी के साथ हो जाते हैं जो ताकतवर होता है। कमजोर की तो ना मेरे जमाने में कोई सुनता है और ना इस जमाने में। वो साथ को बुरी तरह पीटने लगे, गालियां देने लगे, बुरा भला कहने लगे, बाल नोचने लगे। उनके साथी तो आगे जा चुके थे, उनको खबर ना थी कि पीछे ये हो रहा है। मैं इनकी ये हालत देख के रोने लगी। अरे तुमने इनको अकेला समझ के इनके साथ ये सलूक शुरू कर दिया? मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, यूं लग रहा था ये उनको जान से ही मार देंगे। पता नहीं अब क्या करेंगे। उन्होंने मार मार के उनको मक्का की तरफ हांकना शुरू कर दिया, कभी लातों से मारते, कभी पीछे से धक्के देते। मक्का पहुंचे तो आगे मुतम बिन अदी और हारिस बिन हर्ब खड़े थे। उन्होंने देख लिया कि इनके साथ ये सलूक हो रहा है, वो दौड़े हुए आ गए। घबरा के बोले, ए नादानो, ये क्या कर रहे हो? इसको कुछ हो गया तो जानते हो क्या होगा, हमारे काफले इसी के पास से तो गुजरते हैं, तुम होश के नाखून लो। अपने काफलों की खैर चाहते हो तो छोड़ दो इसको, इससे पहले को कोई बड़ा नुकसान हो जाए। वो लोग ये बात सुन के शुक्र है कि पीछे हट गए। मैं हैरान थी, 1400 साल पहले भी लोगों के लिए इकोनॉमिक इंटरेस्ट ही सबसे बड़ा फैक्टर था, और 21वीं सदी जब जहां पर मैं रहती हूं वहां पे भी जब किसी की दुम पे पैर आता था तो तभी वो बाज आता था, और ये इकोनॉमी ही होती थी। जहां पे लोग बेयारो मददगार होते थे वहां पे दूसरे को खुला हाथ मिल जाता था। इंसाफ तो कहीं पे भी नहीं था, इंसाफ के सारे जाबते तोड़ चुके थे। ऐसा जुल्म उठाते थे कि खुदा की पनाह, सिर्फ एक चीज थी जो उनको बाज रखती थी और वो था इनका मफाद, इनकी दुनिया, इनका पैसा। मैं चलते चलते मदीना की तरफ जाने वाले रास्ते के एक किनारे पर बैठ गई। कुछ देर ही गुजरी थी कि एक बड़ी बावकार खातून यहां आकर एक छोटे से टीले पर बैठ गई। वो देखने में बहुत मुअज्ज़ज़ लगती थी, उनके चेहरे पर नेकी थी, खैर थी। वो मदीना जाने वाले रास्ते को देखती जाती और रोती जाती थी। इनको क्या हुआ, इतनी सुबह ये यहां आकर क्यों रो रही हैं? यूं लगता था इनके अंदर इतना गम भरा हुआ है कि रो रो के थकी नहीं रही। मुझे बड़ा तजस्सुस हुआ। इतने में एक आदमी वहां से गुजरा और बोला, ए उम्मे सलमा, आप फिर यहां बैठी रो रही हैं? वो आगे से बोली, और क्या करूं, जिसका शौहर हिजरत करके मदीना चला गया हो, उसका कबीला उसको जाने ना दे और ससुराल वाला कबीला उसका बच्चा छीन ले तो वो औरत रोए ना, तो और क्या करे, ना तो शौहर का साथ रहा ना बच्चा मेरे पास है, मैं जाऊं तो किधर जाऊं? जब उनसे कहती हूं बच्चा मुझे लौटा दो तो कहते हैं क्यों, जब हमारे कबीले के आदमी से तुम्हारे कबीले ने उसकी बीवी छीन ली, तो अब बच्चे में भी तुम्हारा कोई हक नहीं। ये हमारा खून है, हमारा बच्चा है, इसको हम तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। और जब मैं अपने कबीले वालों से कहती हूं कि मुझे ही जाने दो, तो वो भी नहीं मानते कि ये आदमी तुम्हें ले लेकर शहर शहर घुमाता रहेगा, ये हमें गवारा नहीं। वो फिर रोने लगी, मेरा तो कुछ भी बाकी नहीं रहा। वो सिसकियां लिए जा रही थी, रोए जा रही थी। मुझे बहुत दुख हुआ, ये बेचारी तो दो कबीलों की जिद में अपने खानदान से ही जुदा हो गई। आने वाला कोई खुदा तरस आदमी लगता था। उसने कहा, अच्छा उम्मे सलमा, आप फिक्र ना करें, मैं बात करके देखता हूं, कोशिश करता हूं आपके घर वाले ही मान जाएं। मैंने सोचा औरतों पर भी इतना जुल्म हुआ, इनको तरस नहीं आता, एक औरत इस्लाम क्या ले आई, उससे उसका बच्चा ही छीन लिया गया और उसके शौहर के साथ भी ना जाने दिया गया। अब ये बेचारी क्या करें। वो उस शख्स से कहने लगी, मुझे तो 1 साल हो चुका है इनकी मिन्नतें करते हुए, मगर कोई मान के ही नहीं देता। वो रोए जा रही थी और बोले जा रही थी, 1 साल से ये इसी हालत में, मुझे बहुत अफसोस हुआ ऐसी कौम पर। वो अपनी दुख भरी दास्तान बयान कर रही थी। एक माँ के लिए वाकई ये कितना बड़ा कर्म था। वो आदमी बोला, अच्छा, मुझे कोशिश तो करने दें। मुझे खुशी हुई कि शुक्र है अभी भी इस बस्ती में कोई तो है जिसके दिल में कुछ रहम मौजूद है। सारा दिन यूं ही गुजर गया, ये यहीं पे बैठी हुई इसी तरह बार बार रोने लग जाती। अब तो शाम हो रही थी, मैंने देखा कुछ देर बाद ये उठी और अपने घर की तरफ चल दी। मैं भी इनके पीछे पीछे चल पड़ी, मुझे इन पे बहुत तरस आ रहा था। इनके साथ क्या होगा पता नहीं, उस आदमी ने जाके कोई बात की भी या नहीं, पता नहीं ये लोग माने या नहीं। मैंने देखा वो अपने घर में दाखिल हुई तो सामने उनके सारे मेके वाले जमा थे। लगता है कोई खास ही मीटिंग हुई है। वो इनको देखकर झट से बोले, हमने फैसला किया है कि हम तुमको जाने की इजाजत दे दें। उम्मे सलमा ये सुन के बहुत खुश हुई। यूं लगता था पता नहीं जमाने बाद इनके चेहरे पे मुस्कुराहट आई। उनको यकीन नहीं आ रहा था, बोली सच? वो कहने लगे, हाँ और तुम्हारे ससुराली कबीले से भी उस शख्स ने बात कर ली है, वो बच्चा देने पर तैयार हो गए हैं। तुम कल बच्चा लेकर और रवाना हो जाओ मदीना की तरफ। लेकिन ये अकेली कैसी जाएंगी, मैं हैरान हो गई इन लोगों पर, कि अकेले ही भेज देंगे। अगले दिन सुबह हुई, वो सुबह ही सुबह अपने घर से निकली, बहुत खुश थी। इन्होंने अपने ससुराली से अपना बच्चा लिया और अपना सफर शुरू कर दिया। इनको ये भी परवाह नहीं थी कि मैं अकेली कैसे जाऊंगी, 500 किलोमीटर का सफर और साथ कोई भी नहीं, तने तनहा एक बच्चा लेकर। मैं इनके अल्लाह पे भरोसे पे वाकई बड़ी हैरान हुई। इनको कितना यकीन है कि अल्लाह ताला हिफाजत करेगा इनकी। मैं इनके पीछे पीछे चल दी। अभी ये तनीम तक ही पहुंची थी कि वहां पे उस्मान बिन तलहा खड़ा था। अभी तो ये काफिर ही था, मगर इसमें कुछ इंसानियत बाकी थी। इसको भी इनके हालात का लगता है पता था, इसीलिए इसने कहा, मैं आपको ले जाता हूं। मैं बहुत खुश हुई और इन दोनों को दूर तक देखती रही। मुझे खुशी थी कि एक माँ को उसका बच्चा मिल गया और वो वापस अपने शौहर के पास जा रही है। कितनी कुर्बानी है इस औरत की। मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता मदीना की तरफ खामोशी से हिजरत करते जा रहे थे। पहली बैत अकबा से ये सिलसिला शुरू हो चुका था, मगर काफिर जिसको पकड़ लेते फिर उसकी शामत आ जाती थी। लोग छुपकर ही निकल सकते थे। मैं इन लोगों पर हैरान थी कि ये लोग ना तो अपने पास चैन से रहने दे रहे हैं, ना ही जाने दे रहे हैं। आखिर ये चाहते क्या हैं? मैं तो थक के जाके हरम में बैठ गई। वहां देखा तो कुछ देर बाद उमर तलवार गले में लटकाए चले आ रहे हैं। ये क्या, इन्होंने तलवार क्यों गले में लटकाई? कंधे पे भी कमान रखी हुई है और हाथ में तीर लिए, में नेजा पहलू में रखा है। इस हालत में ये बैतुल्ला में क्यों आए? मेरी तरह और लोग भी जो मस्जिद हराम के सहन में बैठे थे, उन्होंने भी महसूस किया। कुछ लोग हैरान होके उनको देख रहे थे। क्या आज उमर को क्या हो गया? उमर रजी ताला उन्होंने बड़े इत्मीनान से सुकून से तवाफ शुरू कर दिया। उसके बाद नफल भी अदा किए और उसके बाद मैंने देखा वो बारी बारी हर मजलिस के पास जाके कुछ कह रहे हैं। मैं उठ के भागी गई कि मैं सुनूं तो सही ये कह क्या रहे हैं। वो बड़ी जुर्रत से और बहादुरी से कह रहे थे, चेहरे बदशक्ल हो जाएं, अल्लाह तुम जैसे लोगों की नाक खाक आलूद करे। जो चाहता है कि उसकी माँ उसको रोए और उसके बच्चे यतीम हो जाएं और उसकी बीवी बेवा हो जाए, वो हरम से बाहर वादी में आकर मेरा मुकाबला कर ले। मैं हिजरत कर रहा हूं। लोग उनकी ये जुर्रत देखकर हैरत से उनको तक रहे थे, मगर किसी में हिम्मत ना थी कि उनको चैलेंज करता, उनको कोई जवाब देता। मुझे आज इस कदर खुशी हुई उनकी ईमानी जुर्रत देखकर। मैंने कहा अब बोलो ना, जवाब दो ना, मगर किसी में दम ना था बोलने का। वाकई उमर उमर ही है, इतना रोब इतना दबदबा। काफरों को तो लगता था सांप सूंघ गया। किधर गई इनकी जुर्रतें? वाकई कमजोर कोई हर कोई दबाता है। अब इनमें हिम्मत ना थी कि कुछ बोलते। मैं जिधर देख रही थी ये मुशरिकीन कुछ गुस्से में नजर आ रहे थे, कोई बहुत गम में थे, कुछ मिली जुली सूरत हाल थी। लगता है इनको हजम नहीं हो रहा कि लोग एक एक करके इनके हाथ से निकलते जा रहे हैं। क्यों मुसलमानों को एक महफूज जगह मिल गई? क्यों कोई उनको पनाह देने वाला मिल गया? ये तो चाहते थे इसी तरह हम जुल्म करते रहे, इनको पीसते रहे और ये हमारे सामने सिसकते रहे, ना जीने देना मरने। अब इनको ये गम लग गया था कि हमने तो इनको दबाया, मगर इन्होंने ना इस दीन को छोड़ा और उल्टा एक और जगह जाके सुकून से जिंदगी गुजारने लग गए। इनको पनाह भी मिल गई और वो भी ऐसी जगह से जो बड़ी हसास थी, इस हवाले से कि वहां से इनके तिजारती काफले गुजरते थे। अब यसरब वालों के साथ बिगाड़े तो कैसे बिगाड़े, खुद का ही नुकसान था। इनका तो हाल ये हो गया था, ना उगले चैन ना निगले, करें तो करें क्या? कोई और होता तो ये उसके साथ लड़ने मरने को तैयार हो जाते, मगर यसरब वालों का क्या इलाज किया जाए? अगर उनके साथ दुश्मनी की तो अपने काफलों का क्या बनेगा? वो तो गुजरने ही नहीं देंगे। इनका तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, और ये इनको किसी कीमत पर गवारा ना था। इनके लिए दुनिया हर चीज थी। मैंने देखा एक तरफ से इनके बड़े बड़े सरदार मिलकर जा रहे हैं किसी तरफ, उनकी चाल ढाल से लगता है जैसे किसी बहुत ही अहम काम के लिए रवाना हो रहे हैं। दूसरी तरफ से भी इसी तरह चंद सरदार चले आ रहे हैं, वो भी उसी तरफ चल दिए। ये क्या, ये मुख्तलिफ सिमतों से टोलियों की शक्ल में चले आ रहे हैं और एक ही जगह जा रहे हैं। मेरा माथा ठनका, जरूर कोई बात है जिसके लिए ये जमा हो रहे हैं। मैं भी पीछे हो ली। ये सब एक मकान में दाखिल हो रहे थे। मैंने देखा वो कुछ पार्लियामेंट हाउस टाइप की चीज थी, ऐसे ही कोई जगह लग रही थी जैसे कोई मीटिंग की जगह हो। और शायद इन्होंने सबने कोई एक वक्त मुकरर किया हुआ था, इसीलिए सब उसी वक्त पे यहां आ रहे थे। लगता है ये अच्छी तरह समझ गए हैं कि अब खतरा इनके लिए बढ़ गया है और इसका कोई इलाज करना होगा। इस वक्त कुरैश के कबाइल, तमाम कबाइल के नुमाइंदे पहुंच चुके हैं और सभी मेरे नबी के खिलाफ अपनी अपनी राय दे रहे हैं कि आपके साथ क्या किया जाए। आवाजें ऊंची हो रही हैं, कोई कुछ मशवरा दे रहा है, किसी की कोई तजवीज है। इतने में मैंने देखा एक बूढ़ा आदमी आबा पहने हुए दरवाजे पे आके खड़ा हो गया। बाकी सरदारों ने भी ये नोटिस किया तो मुड़ के देखा, बोले ये कौन है? उसने कहा मैं नजद का शेख हूं, आप लोगों का प्रोग्राम सुन के हाजिर हुआ। हो सकता है आपको मैं कोई खैर ख्वाना मशवरा दे सकूं। मैंने सोचा ये खैर ख्वाही का मशवरा देगा, ये तो शक्ल से ही शैतान लग रहा है। वो सरदार बोले अच्छा आ जाओ फिर। वो बूढ़ा नजदी अंदर दाखिल हो गया। अब तो तजावीज का एक अंबार था, हर एक अपने अपने मुताबिक हल पेश कर रहा था, हर एक अपनी अकल दौड़ा रहा था। इनकी बहस ही खत्म नहीं हो रही थी। एक कहने लगा हम इसको जिला वतन कर देते हैं, फिर हमें क्या, कुछ भी करता फिरे, हमारे पास तो नहीं होगा ना। नजदी शेख बोला नहीं खुदा की कसम ये ना करना, तुम देखने नहीं हो इसकी बात कितनी उम्दा है, इसकी बोल कितने मीठे, ये तो लोगों का दिल जीत लेगा। अगर तुमने ऐसा किया तो कुछ इत्मीनान नहीं कि वो अरब के किसी कबीले में नाजिल हो और इन्हें अपना पैरोकार बना ले और उसके बाद तुम पे चढ़ाई कर दे और तुम्हें तुम्हारे शहर के अंदर रोंद के तुमसे जैसा चाहे सलूक करें। कोई और तजवीज पेश करो। अबुल बुख्तरी ने कहा इसको लोहे की बेड़ियों में जकड़ कर कैद कर दो और बाहर से दरवाजा बंद कर दो, फिर उसकी मौत का इंतजार करो। अस्तग़फिरुल्लाह, मैंने ये बात सुनी, मुझे उसके ऊपर सख्त गुस्सा आया। कैसी जालिमाना तजवीज है? शेख नदी ने कहा नहीं नहीं खुदा की कसम ये सही नहीं है, वल्लाही अगर तुम लोगों ने ऐसा किया कि उसको कैद कर दिया तो उसकी खबर बंद दरवाजे से बाहर निकल के उसके साथियों तक जरूर पहुंच जाएगी। फिर कुछ बईद नहीं, वो लोग तुम पे धावा बोल दें और उस शख्स को तुम्हारे कब्जे से निकाल के ले जाएंगे। फिर वो इसकी मदद से अपनी तादाद बढ़ाकर और तुम पर गलबा पा लेंगे, लिहाजा कोई और तजवीज पेश करो। मैंने देखा ये शेख नजदी बड़ी बढ़ के बातें कर रहा है, हर एक की तजवीज को रद्द कर रहा है। ये कोई बड़ा ही प्रोग्राम लेकर आया है। ये दोनों तजावीज तो रद्द हो चुकी, अब पता नहीं ये क्या तजवीज पेश करेंगे। इन बड़े सरदारों में अबू जहल भी मौजूद था, उमैया बिन खल्फ भी था, नजर बिन हारिस भी था, लेकिन अबू जहल से ज्यादा बड़ा फिरौन और कौन होगा? आखिर में उसने कहा, मेरी भी एक राय है, मैं देखता हूं कि तुम में से कोई उस पे नहीं पहुंचा। लोगों ने कहा, अबुल हकम वो क्या है? अबू जहल बोला, मेरी राय ये है कि हम हर कबीले से एक मजबूत नौजवान मुंतखब कर ले, फिर हर एक को तेज तलवार दे दे, इसके बाद सब के सब उसका रुख करें और एक ही दफा तलवार मार के उसको कत्ल कर दे, जैसे एक आदमी ने तलवार मारी हो। इसी तरह हमें उससे निजात मिलेगी, इस तरह हमारे ऊपर उसके खून का बदला भी नहीं आएगा। वो अब्द मनाफ किस किस से जंग करेंगे, सबसे तो नहीं कर सकते, फिर आखिर वो दियत लेने पे राजी हो जाएंगे और हम सब मिलके दियत अदा कर लेंगे। मैंने ये सुना तो मेरे होश गुम हो गए। मेरा हाल ये था कि काटो तो लहू नहीं, इस कदर संगदिल हो सकता है एक वो शख्स जो आपकी खैर ख्वाही में दिन और रात तड़प रहा हो, उसके लिए कोई ऐसा सोच सकता है? कोई इस कदर भी जालिम हो सकता है? उन्होंने इनका बिगाड़ा ही किया था। मैं हैरान थी कि कैसे लोग हैं, अपने खैर ख्वाह के लिए इनके ये जज्बात। उधर शेख नजदी ने जब ये बात सुनी तो उसने कहा, बात तो ये है जो इस नौजवान ने कही, ये है असल बात, बाकी तो सब बेकार है। उसकी ये बात सुन के बाकी लोग भी मान गए कि अब इसके सिवा कोई रास्ता नहीं, और पक्का इरादा करके उठ खड़े हुए। अब उन्होंने यही सोचा कि फौरी तौर पे इस पे अमल किया जाए। मैं तो जहां बैठी थी उधर बैठी की बैठी रह गई। ये मेरे नबी के साथ ऐसा करने का सोच रहे हैं? इनमें से किसी एक के अंदर भी कोई इंसाफ नहीं, सभी मिल गए इस बड़े जुर्म में। मुझे लगता था मेरी टांगों में खड़े होने की जान भी नहीं रही, मेरी टांगे मेरा बोझ उठाने से कासिर थी, मगर मैं फिर भी दीवार का सहारा पकड़ के किसी तरह खड़ी हुई और गिरती पड़ती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ रवाना हो गई। मैं तेज चल रही थी कि मैं वहां पहुंचूं और किसी तरह उनको ये इत्तला दे दूं, मगर मेरे पहुंचने से पहले ही लगता है मेरे रब ने उनको इत्तला दे दी थी। आप उस वक्त घर से निकल रहे थे, सख्त दोपहर थी, चिलचिलाती धूप थी, मेरे नबी ने अपने सर पर कपड़ा डाला हुआ था। इस वक्त तो आप कहीं पे भी नहीं निकलते, फिर इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? मैं आपके पीछे ही चलती। आप अपने दोस्त, अपने रफीक अबू बकर सिद्दीक रसी तला के मकान पे पहुंच गए थे। वहां पहुंच के आपने सलाम किया, इजाजत चाहिए अंदर आने की। वो लोग घबरा गए क्योंकि इस वक्त तो मेरे नबी आया नहीं करते थे। उन्होंने फौरन अंदर दाखिल होने की इजाजत दी। मेरे नबी अंदर गए तो फरमाया, तुम्हारे पास जो लोग भी हैं उनको यहां से हटा दो। आपके प्यारे साथी ने फरमाया, बस आपके घर वाले ही हैं, आप पर मेरे मां बाप फिदा हूं है अल्लाह के रसूल। मेरे नबी ने कुछ परेशानी से फरमाया, अच्छा, मुझे रवानगी की इजाजत मिल गई है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा, साथ है अल्लाह के रसूल? मेरे मां बाप आप पर फिदा हूं? मेरे नबी ने फरमाया, हाँ। अबू बकर सिद्दीक की आंखों में आंसू आ गए। आप खुशी से रोने लगे। मेरे नबी ने फरमाया, आज रात ये हुक्म आया है कि आज की रात मैं बिस्तर पर ना गुजारूं। मैं खुश हो गई, आपको हिजरत की इजाजत मिल चुकी है और आज रात ही आपको यहां से हिजरत कर जानी है। लेकिन उन लोगों ने जो प्रोग्राम बनाया हुआ है उसका क्या होगा? मुझे यकीन था अल्लाह ताला अपने नबी की मदद जरूर करेगा। मेरे नबी ने अपने रफीक अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ वक्त तय कर लिया और वहां से रवाना हो गए। यहां तक था आज का एपिसोड। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो अगले रमजान में हम देखेंगे कि आगे क्या हुआ। अल्लाह ताला इस काविश को कबूल फरमाए।
ये बात सच है, हकीकत यही है, नबी आपको मैंने देखा नहीं है, न दौरे मोहम्मद में पैदा हुआ मैं, न साथी सफर का कभी बन सका मैं, न आका की आवाज तक सुन सका मैं, गजवात में मुशरिकों से लड़ा मैं, मगर सच है ये भी कसम है खुदा की, मोहब्बत मुझे आपसे है नबी जी, सल्ले अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
صلى الله